ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेंगे और आज जैसा कि प्रसंग चल रहा है प्रजापति दक्ष के द्वारा नारद मुनि को साप 5वें अध्याय में, और यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने
कौन सा
27-28 तो हम लोग इनको रिपीट करेंगे पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। अब भक्षाह कतिचेत मासान कतिचेत वायु भोजनाह आराधयन मंत्रम इमं अभ्यस्यन्त एडस्पतिम। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व धिषणाय महाहंसाय धीमहि। अभक्षाः कतिचिन्मासान कतिचिद् वायु भोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम्। ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि। शब्दार्थ। अब भक्षाह केवल जल पीते हुए कतिचित मासान कुछ महीनों तक कतिचित कुछ वायु भोजनाह वायु खाते हुए अथवा केवल श्वास लेते हुए आराधयन पूजा की मंत्रमिमम इस मंत्र का जो नारायण से अभिन्न है अभ्यस्यन्तः अभ्यास करते हुए इडस्पतिम सभी मंत्रों के स्वामी भगवान विष्णु को। ओम हे प्रभु नमः सादर नमस्कार नारायणाय नारायण को, पुरुषाय परम पुरुष को, महात्मने उच्च परमात्मा, विशुद्ध सत्वधिष्णाय सदैव दिव्य धाम में स्थित रहने वाले, महाहंसाय महान हंस के समान भगवान को धीमहि हम सदैव अर्पित करते हैं। यहाँ ध्यान का अर्थ अर्पित किया है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूंकि वे परम पुरुष परम हंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। समझ में आ गया? चलिए तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, इन श्लोकों से ऐसा लगता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। कलयुग के लोग यहाँ पर उल्लिखित कठिन तपस्या केवल जल पीते हुए तथा महीनों तक केवल वायु खाते हुए नहीं कर सकते। लोगों को ऐसी विधि की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु उन्हें कम से कम चार अवांछित तत्वों अर्थात अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का परित्याग करके थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। इस तपस्या को कोई भी कर सकता है और फिर हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण तुरंत ही प्रभावशाली होगा। उसे तपस्या की विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे गंगा या यमुना के जल में स्नान करना चाहिए, या गंगा यमुना की अनुपस्थिति में उसे समुद्र के जल में स्नान करना चाहिए। यह तपस्या का एक अंग है, इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने दो अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना की है, एक वृंदावन में यमुना जी के तट पर और दूसरा मायापुर नवदीप धाम में। वहाँ पर मनुष्य गंगा में या यमुना में स्नान कर सकता है, हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस तरह सिद्ध बनकर भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे असाधु साधुता दायिन अति नीचोच्चता कर हानमुंच कदाचिन माम प्रेमणा हृतकंठयो स्फुर श्रूयताम देव देवेश नारायण जगत्पते त्वदीये नावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा। अभक्षा कतिचिन मासान कतिचिद वायु भोजना आराधयन मंत्रमिमा मभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महांसाय धीमहि। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूँकि वे परम पुरुष परमहंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने जो कुछ महीने तक तपस्या किया तो किस प्रकार से किया और कौन से मंत्र का जप किया। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है कि जैसी तपस्या इन्होंने किया ऐसी तपस्या सर्वसाधारण मनुष्यों के बस की नहीं है। वायु खा के रह सकते हैं, कितना कठिन काम है। और इसीलिए वायु ना तो वायु खा करके ऐसे रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वायु खा के, अब भक्षा और वायु भोजना, वायु भोजन है उनका दाल चावल। इसलिए बंगला में भी कह देते हैं जल खाएंगे, क्रियाओं का यहाँ वहाँ प्रयोग होता है, बीड़ी भी खा लेते हैं। बंगाली लोग बोलते हैं ना बीड़ी खाबो, तो बीड़ी भी खा लेते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं। तो खाने का मतलब पीना, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है वायु भोजना, तो वायु ही जिनका भोजन है ऐसे। और अब भक्षा केवल जल पी करके, कितना कठिन कार्य है कि जल पी करके केवल रह जाए व्यक्ति, बहुत कठिन काम है। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में ऐसी तपस्याओं का वर्णन भी है और भक्ति शास्त्रों में ऐसी तपस्याओं का निषेध भी है। क्यों? क्योंकि जनरली जितनी भी तपस्याएं कही गई हैं उनका उद्देश्य यदि उनका डेस्टिनेशन मानेंगे तो मैक्सिमम वैकुंठ तक पहुंच सकता है व्यक्ति, उससे आगे नहीं। भगवत धाम में श्री कृष्ण के पास जाने के लिए ऐसी कठिन तपस्याओं की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी तपस्याओं में बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में आ जाती हैं। अब आप देखेंगे कितने सारे तपस्वी हुए भारतवर्ष में जिनका नाम सुनने में आता है, कितना भयंकर क्रोध आता था, दुनिया जला देंगे। अब दुर्वासा जैसे ऋषि, विश्वामित्र, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि हुए। तो तपस्या करने में कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती हैं जिनकी भक्ति में कोई आवश्यकता नहीं है। और एक और धारणा जो बन गई है तपस्या करने की, कि तपस्या का मतलब कुछ ना खाना, कुछ ना पीना, शरीर को सुखा डालना, ये तपस्या है। लेकिन एक्चुअल में ये तपस्या नहीं है। एक भर्तृहरि हुए एक राजा हुए, बहुत अच्छे विद्वान थे। वो लिखते हैं कि कोई तपस्या कर ही नहीं सकता। ये जितने लोग कहते हैं ना मैंने ये तप किया, मैं ये तप करूंगा, ये झूठा है। कहते हैं कि तपस न तप्तम भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपस न तप्तम वयमेव तप्ता। सुना कभी किसी ने वाला श्लोक? वो कहते हैं कि भोग कोई भोग नहीं सकता, भोग हमको भोग डालेंगे। कोई भोग भोगता है? इतना खाए, सोचिए हम लोग 50 साल के, 20 साल के, 30 साल के, कितने भोग न भोगे, लेकिन कुछ शरीर में दिख रहा है, कोई चमक है शरीर के अंदर। उस खाना इतना खाए कहाँ गया? इतने सारे आइटम खाए लेकिन आज तक लालसा समाप्त हुई नहीं हुई। तो भोग भोगा ही नहीं है, भोग ने हमको भोग करके उल्टा हमारी इंद्रियों को क्या कर दिया है, उनकी सामर्थ्य को घटा दिया है। जो भोग वेद यमराज जी भी बोलते हैं कि जो भोग है ना, कहते हैं कि जरेन्ति तेज, ये शरीर के तेज को, इंद्रियों के तेज को ना, ये जितने भी भोग हैं ये कम कर देते हैं। और ये हम सबका अनुभव है, हमारी आंखों में चश्मा लगने लगता है, कान में ठीक से सुनाई नहीं देता, इतना तो सुने हैं, इतने तो भोग भोगे हैं, और तैयार होना चाहिए ना शरीर को, जीवा को परिपुष्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, उतने ही कमजोर है, उतने ही कुछ देखेंगे तो लालच में आ जाएंगे। पैसे का लालच नहीं है, कई लोग कहते हैं ना हमको धन का लालच नहीं है, लेकिन महाप्रसाद देखा नहीं कि दिमाग खराब हुआ, चलो एक आध पॉकेट में भी डाल लें, हो सकता है गुलाब जामुन शाम को खा लें। तो लालच एक्चुअल में कुछ लोगों का कहना है कि केवल धन का ही लालच है, ये सब लोभ है तरीके का। जैसे चोरी, ये नहीं कि किसी का सामान उठा के जेब में रख लेना, काम चोरी भी चोरी है, बिजली चोरी भी चोरी है, एसी की हवा चाहिए लेकिन चोरी करके सरकार से, तो चोरी काउंट होगी वो। इसीलिए एक्चुअल में ये तपस्या नहीं है। तो इसलिए तपस न तप्तम वयमेव तप्ताह, कोई व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, उल्टा जो तप है ना उसको तपा डालता है, उसको सुखा डालता है, जला डालता है उस व्यक्ति को। इसीलिए तो फिर तपस्या है क्या? उद्धव जी ने ये प्रश्न किया, आप लोग ना थोड़ा थोड़ा आगे खिसक गए, पीछे बिल्कुल गेट में पहुंच गए, पता चले बाहर ना पहुंच जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ वाले बहुत सारी जगह है। तो उद्धव जी ने भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में बहुत सारे प्रश्न किए, उन प्रश्नों में एक प्रश्न था किम तपः, बहुत अच्छा प्रश्न किया, लोगों की धारणा को समाप्त करने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि उद्धव जी बड़े परमहंस थे, बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न कर दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बड़े छोटे छोटे प्रश्न है, 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में 28वें श्लोक से स्टार्ट होते हैं, 29वें श्लोक से, तो छोटे छोटे प्रश्न है, किम तपः, किम ज्ञानम, किम दानम, सब ऐसे करके, को यज्ञ, यज्ञ क्या है, धर्म क्या है, सब छोटे छोटे प्रश्न है। तो उद्धव जी ने पूछा किम तपः, तो भगवान ने एक छोटे सेंटेंस में आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया? 37वें श्लोक में, 11, 19, 37 में भगवान कहते हैं कि कामस त्यागस तपः स्मृतम, सब लोग बोलिए, कामस त्यागस तपः स्मृतम, काम त्याग, कामनाओं का जो त्याग है उसको तपस्या कहा गया। अब बताइए, शरीर को सुखाना तपस्या नहीं, नहीं तो ठाकुर जी हमारे कह सकते थे कि खूब शरीर सुखाओ, पानी मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन नहीं, छोटी सी बात बोले जो मूल है सभी चीजों की, क्या है? कामनाओं का त्याग, कामस त्याग, काम का जो त्याग है उसी को तपस्या कहा गया है। हम सब कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है भूखे रहना, कोई भी व्यक्ति यदि एक दिन भूखा रहता, पहला दिन उसमें लालच बढ़ती है खाने की, खा लूं, जैसे एकादशी में निर्जला जो लोग करते हैं, और जो जन्माष्टमी में पहला दिन, और दूसरे दिन यदि पारण नहीं किया और 12 बजे तक नहीं खाया तो धीरे धीरे उसकी भूख मिटने लगेगी, क्योंकि अग्नि है, अग्नि में जितना घी डालेंगे उतना और जलेगी वो, तो पेट में भी अग्नि है, उसमें कुछ डालते जाएंगे तो और मांगती जाएगी वो, और ना डालेंगे तो कुछ ना मांगेगी। समझ में आया? किसी ने किया तो 3-4 दिन उपवास, उन्होंने नव दुर्गा वालों को पता है, जो दुर्गा जी को उपवास करते हैं ना उनको मालूम है, वो लोग कर लेते हैं 9 दिन तक, उनको पूछना पहले, मुझे भी, मैंने भी किया है 11 दिन, तो मुझे भी अनुभव है इसका, कि वो पहले दिन और दूसरे दिन के बाद भूख मरने लगती है, फिर आपके अंदर अलग ही शक्ति दौड़ती है। तो इसलिए ये तो करना बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कामनाओं का त्याग करना ये बड़ा कठिन है, क्योंकि शरीर को सुखा देने से ऐसा नहीं किसी का मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे, जितने सारे भिखारी हैं जिनको खाना नहीं मरता, भूखे मर जाते हैं, तब तो उनको गोलोक वैकुंठ मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। केवल शरीर सुखाना उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए भगवान, बहुत अच्छी बात है कि कामस त्याग तपा स्मृतम, कामनाओं का त्याग करना। और कामना कितनी होती है? अनंत कामनाएं हैं। अनंत में से मुख्य पांच ही कामनाएं हैं, रूप रस शब्द, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं चाहते, इनमें वैरायटी चाहते हैं। रूप की वैरायटियां बहुत सारी हैं, शब्दों की वैरायटी बहुत सारी हैं, स्पर्श की वैरायटी बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। तो इस प्रकार से रूप रस, रस तरह तरह के होते हैं, छह रस तो है ही है। अब छह रस में भी मिठाइयां, देखिए ब्रजवासी के पास जाइए, मीठा एक ही पदार्थ है लेकिन वैरायटी कितनी सारी बनाया हुआ है। रसगुल्ले का थोड़ा अलग स्वाद, कलकत्ता के रसगुल्ले का अलग स्वाद, थोड़ा है सब मीठे, खाना जीभ से ही है। तो इसीलिए वैरायटी बहुत सारी है। तो भगवान कहते हैं कि कामनाओं का त्याग करना ही मुख्य तपस्या है। जिसने कामनाओं का त्याग नहीं किया उसकी तपस्या सफल हुई ही नहीं। क्योंकि जिस समय व्यक्ति शरीर छोड़ता है उस समय जो अंतःकरण, जो 17 जो सूक्ष्म शरीर हैं, एक कारण शरीर, वो साथ में जाते हैं आत्मा के। कौशिकी उपनिषद है एक, उसमें तीसरे अध्याय में आया है चौथे श्लोक में कि सयदा अस्मास शरीराद उत्क्रामति सर्वई रेतई सह। कहते हैं कि जिस समय आत्मा इस शरीर से निकलता है ना, तो सर्वई रेतई उत्क्रामति, इस सारे जो एलिमेंट है मन बुद्धि अहंकार और पंच वायु पांच प्राण इंद्रियां हमारी, इन सारे 17 तत्वों के साथ आत्मा जाता है। और कामना किसमें है? मन में। छांदोग्य उपनिषद में तो लिखा है कि काम एष एतत् मनः कामः, ये जो मन है ना यही काम ही है, क्रोध भी ये मन ही है। मन में क्रोध रहता नहीं, वो बोलते हैं कि मन ही क्रोध है, मन ही काम है, लेकिन मन में रहता है क्योंकि मन एक अंतःकरण है। तो इसीलिए ये जितने भी कहाँ रहते हैं, नाक में, ताक में, कहीं नहीं, सब मन के अंदर है। मन के अंदर सारी वासनाएं भरी हुई हैं। तो इसीलिए मार्कंडेय पुराण में उसका एक समाधान दिया। क्या समाधान दिया? कि यदि जो व्यक्ति कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता है, बहुत कठिन है त्याग करना क्योंकि संस्कार बहुत स्ट्रांग है, तो बोलते हैं कि यदि कामम हातुम न उत्साहित, ऐसा करके एक श्लोक है, स्मरण नहीं आ रहा है, उसमें कहते हैं मार्कंडेय ऋषि कि कामनाओं को छोड़ने में यदि कोई समर्थ नहीं है तो क्या करना चाहिए? उन कामनाओं को मुमुक्षा की ओर, यहां पर हमारे भक्ति की ओर लगा देनी चाहिए, भक्ति में लगा देनी चाहिए। यही बात वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि जो भी कामनाएं हैं, जितना भी एक्टिविटी है, उस सारी की सारी क्रियाओं को श्री कृष्ण के लिए करना प्रारंभ कर दें। बस अलग से भक्ति नहीं है, भक्ति ये नहीं कुछ और बाहर से कुछ लाना है, जो हमारे पास है उसी को भगवान में लगाना है बस। तो हमारे पास मुख्य चीज क्या है? हमारी इंद्रियां नहीं, इंद्रियों की भक्ति से कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता है। इंद्रियां जड़ है, इनका कुछ भी कार्य नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के न रहने पर भी मन अकेला काम कर सकता है। लास्ट प्रवचन में मैंने ये बात बोली भी थी स्वप्न का उदाहरण दे करके कि सपने में कोई भी इंद्रियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मन एक अपना एक पूरा राज्य बना लेता है, पूरी सत्ताएं बना लेता है, जीवित व्यक्ति बना लेता है। इसलिए मन ही मुख्य कारण है। तो और मन में ही काम क्रोध लोभ आदि का वास है, तो इसलिए उस मन में से कामनाओं को हटाना, और हटाना क्या है? भगवान में लगाना। अब किसी के अंदर बहुत लोभ है, बहुत क्रोध है, तो क्या करेगा? लेकिन इसका मतलब अब क्रोध को कैसे सेवा में लगाएगा? बहुत सारे लोग अर्जुन का और हनुमान जी का उदाहरण देते हैं, हमारे बस का नहीं है अर्जुन और हनुमान बनना। अर्जुन भी महाभागवत है और हनुमान जी भी महाभागवत हैं, वो भगवान में क्रोध को लगा करके भी निर्लिप्त रहेंगे। लंका जला करके आ गए, पूछा किसने किया? भगवान श्री राम कृपा से सब हो गया, और हम थोड़ा सा कुछ करेंगे तो अरे हमने किया, हमने ये वाला केस जितवाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उतने योग्य नहीं हैं। इसीलिए सती वाले प्रसंग सीखने लायक है। किसी वैष्णव की निंदा सुनकर के भी अपना प्राण का त्याग, दो चीजें बताई थी, क्या क्या किसी को याद है? या तो उस व्यक्ति की जीवा को खींच लो, या तो फिर क्या कर दें, वहां से हट जाएं। या अपने प्राणों को त्याग दें। तो सती प्राणों का त्याग मतलब सती अपने गई नहीं वहां, और अपने पिताजी का जीव भी नहीं खींच सकती है, शक्ति में उनके पिताजी अधिक हैं और पिताजी हैं, रिस्पेक्ट भी करती हैं, तो इसलिए जो अंतिम था उनके पास कि अब हम अपने प्राणों का ही त्याग कर दें, क्योंकि हिंसा में किसी भी व्यक्ति का लाभ हो नहीं सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्रोधे क्रोध न स्यात्, क्रोध को क्रोध में क्रोध करना चाहिए, किसी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम भगवान की सेवा का नाम लेकर दूसरे को गुस्सा कर देते हैं और अपना अंतःकरण भी जलता है, बाद में भी जलता रहता है। ऐसा नहीं है क्रोध जिस समय करते उस समय तो जलता ही है और उसके बाद भी काफी समय तक बहुत रिग्रेट करते हैं, ऐसा क्यों कर दिया। और जो दुष्ट होगा वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैंने गलत किया, वो तो सोचेगा अच्छा किया, धमकाने के लिए किया। वो अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति हैं, वो ऐसा सोचते हैं। खैर, तो इसीलिए तपस्या का मतलब पता चला। क्या है तपस्या, ऐसा किसने कहा, भगवान ने कहा, इसलिए हम भगवान को सर्वोपरि सत्ता मानते हैं और उनके वाक्य हैं। बाकी ऋषि सब अपने अपने भगवान के ही वाक्यों को लेकर के मनगढ़ंत सब रच लिए हैं, समझिए। भगवान ने खुद ही कहा ये बात, भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में 6 से लेकर के 9 श्लोक पढ़िए, उसमें भगवान खुद ही कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस गुण का था वेद वाणी को जब पढ़ा तो उसी गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसके अर्थ को करके अपना एक परंपरा संप्रदाय बना लिया। उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्म है, तो फिर इतने मार्ग कैसे बन गए, इतने सारे मार्ग, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, भक्ति करो, ज्ञान करो, कर्म करो, योग करो, ध्यान करो। भगवान बोलते हैं अरे ये सब तो नन्हे मुन्ने बालक हैं, इन्होंने क्या किया कि मेरी जो वाणी निकली तो जो सतोगुणी व्यक्ति था, रजोगुणी तमोगुणी, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वेद के अर्थों को कर दिया, वो उनका कुछ भी तात्पर्य उनको नहीं पता है। क्यों नहीं पता, उसका भी कारण बता दिया। कहते मन माया मोहित धिया वदंती पुरुष पुरुषम पुरुषर सब, कहते मेरी माया से मोहित होकर के उन्होंने ऐसा काम किया। और यथा कर्म यथा रुचि वदंती, जैसा कर्म है जैसा रुचि है वैसा ही ईश्वर के बारे में बताते हैं। अब कोई समुद्र को मापने गया तो किसी के पास 1 मीटर की स्केल है बड़ी सी मेजरमेंट का जो, अब वो डालेगा तो कहेगा अरे वाह ये तो एक ही मीटर है। किसी के पास 2 मीटर का है तो डालेगा बोला समुद्र तो इतना ही है। किसी के पास 4 मीटर की है तो वो तो कहेगा कि समुद्र 4 मीटर का है गहरा। तो जिसके पास जितनी खोपड़ी है, दिमाग मस्तिष्क है, चलता है, उतना ही भगवान के बारे में बोल सकता है। लेकिन भगवान ने बोला यदि मुझे जानना है समझना है तो भक्त्या एक है अहम ग्राह्य, उसी में 11, 14, 21वें श्लोक में समाधान कर दिया कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे ठीक से समझ सकता है कोई व्यक्ति, और भी जो जितने साधन है उनके द्वारा ठीक ठीक नहीं समझा जाएगा। क्योंकि उनका एक कारण भी है, क्योंकि जितने भी साधन आपको दिखाई पड़ते हैं हमको ये सत्वगुण के अंदर हैं, और सत्वगुण माया का गुण है, और माया कभी भगवान श्री कृष्ण को समझाने में समर्थवती नहीं है। ये बात समझ में आई, सत्वगुण में ही तपस्या योग ध्यान आदि होते हैं, और सत्वगुण के द्वारा इनके द्वारा, इसीलिए इन तपस्याओं के द्वारा भी श्री कृष्ण कोई नहीं समझ सकता है। इवन भागवतम में आप पढ़ेंगे 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार किया। वो कहते हैं कि पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः तदर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्या। तो कहते हैं कि विबुद्ध भक्त्या, बड़े बड़े योगी हुए, अपना ज्ञान योग कर्म किए और करते करते थक गए, बोला रे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब जीरो है, शून्य है। इसलिए तो ढूंढते ढूंढते क्या कंक्लूजन निकलता है ज्ञानियों का, शून्य है, जीरो है, निर्विशेष है, निराकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो बड़े बहुत सारे लोग हैं आर्य समाजी और बहुत सारे और भी हैं हमारे भारत में ओशो इत्यादि के फॉलोअर, वो तो कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, वो ईश्वर उनके अंदर घुस करके अपने लिए कहलवा रहा है, ये तो महापुरुष हैं। समझे कि नहीं, वो भगवान यदि कहते कि मन मना भव मत भक्तो, ये तो ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर उनके अंदर प्रविष्ट होकर के ऐसा कहलवाता है पैगंबर से, यीशु से, श्री कृष्ण से, राम से। और यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे योग कर्म भी पुरे भूमन बहवोप योगिना, एक दो नहीं बहवह बहुत सारे योगी योग कर्म भी, योग कर्म ध्यान तपस्या आदि से ढूंढते ढूंढते अन्वेषण करते करते जब क्लांत हो गए, श्रांत हो गए, तब क्या किए? तो कहते हैं भक्त्या विबुद्ध्य, समझ में नहीं आया तो भक्ति किया। ऐसा नहीं समझना है कि केवल सतयोग का लक्षण है ध्यान और त्रेता में करेंगे तो नहीं, पहले में क्या है, पहले में क्या है ध्यान, दूसरे में यज्ञ, तीसरे में पूजा आदि, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते पहले के जो योगी वो भी थक गए और बाद में जब जाना कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, भक्त्या विबुद्ध्य प्रपेदिरे अंजस अच्युत ते गतिम पराम, और आप भक्ति से आपको जाना, भक्ति करके तब आपकी गति को प्राप्त किया। इवन ये इसी बात को जो उद्धव जी हैं भागवत के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो भी यही सेम किस कहते हैं कि अथात आनंद दुघम पदाम भुजम, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के तो आनंद दुहने वाले, आनंद देने वाले, आनंद युक्त चरण कमल हैं, तो इन चरण कमलों की भी, लेकिन इनको योगी लोगों ने बहुत प्रयास किया अपने तरीके से ढूंढने का, लेकिन वो भी थक गए, सुख नहीं मिला उनके कर्मों से, योग आदि से, तो क्या किया? तो कहते हैं कि वो भी, उन्होंने भी क्या किया, भक्ति करके एकमात्र आपको प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उनकी तपस्या से वो जब कर रहे थे तो बार बार त्वन माया कहते हैं विहता, वो आपकी माया के द्वारा बार बार अभिभूत हो जा रहे थे, उनके माया के कंट्रोल में, नियंत्रण में आ जा रहे थे, इसलिए सोचा कि अब नहीं सुख, कहते हैं सुखम न विश्वेश्वरा योग कर्म भी, सुख नहीं है योग कर्मों में, देखा कि सुख मिल ही नहीं सकता है। सुख मतलब कौन? हाँ, भगवान श्री कृष्ण। बहुत सारे पंडित विद्वान लोग कहते हैं कि सुख और दुख अलग अलग चीजें हैं, तो कहते हैं सुख का अपोजिट है दुख, और आनंद श्री कृष्ण है, सुख अलग है। ये बात ऐसी वो अपने मन से ही लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। वेद कहता है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, आप पढ़िए 6वें अध्याय के 7वें अध्याय के 26वें प्रपाठक के पहले एक ही मंत्र है कि यो वै भूमत तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो सबसे अनलिमिटेड पदार्थ है वही सुख है। तो भगवान का एक नाम है, और आनंदो ब्रह्मेति बेजाना, तैत्तरीय उपनिषद में भी उनको आनंद कहा, अब भागवत में तो 20 जगह कम से कम आनंद कहा, मैं वो सब में नहीं जाऊंगा। खैर, तो ये बात है कि श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए, सुख नहीं मिला योग कर्मों से, इसलिए इस मार्ग का त्याग करके। इवन सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ में भागवत के जो 2रे स्कंद के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में वो खुद कहते हैं कि ये तपस्याओं के बल पर, तपस्विनो क्या है, तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाह, कहते हैं जितने तपस्वी दान दानी योगी ध्यानी मंत्रवित मंत्र को जानने वाले, कहते हैं क्षेमम न विंदंती, इन सब का कल्याण हुआ ही नहीं। कब तक और कब तक नहीं हो सकता? कहते हैं जब तक आपके चरण कमलों के आश्रय न ले लें। इसलिए ये सब मार्गों का अनुसरण करने वाले लोगों को पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। अब यहाँ पर ये तो रही बात तपस्या की और क्या करना है, तो यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद ने भी कहा कि तपस्या आदि उन युगों में ठीक था, और भक्ति में केवल जो सामान्य हमारे लिए एकादशी को रहना, जन्माष्टमी रहना और व्रत रहना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। लोग कई बार क्या है कि व्रत का अनुकल्प ढूंढ लिए हैं, विकल्प। एकादशी जीव गोस्वामी लिखते हैं भक्ति संदर्भ में कि एक्चुअल में जो एकादशी आदि ये जो व्रत हैं इनके कहने से श्री हरि में बड़ी तीव्र भक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि हरि बासरा है, ये सब हरि के दिन है, एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, तो हम लोगों ने क्या उसका विकल्प ढूंढ लिया कि अब एकादशी निर्जला रहने से वैसे भी दो प्रकार के तो फायदे है ही हैं। शारीरिक फायदा है, शरीर स्वस्थ रहता है, डॉक्टरों से पूछे बोले एक दिन उपवास करिए हफ्ते में या 15 दिन में, बहुत लाभ मिलता है, इंद्रियां सूखेंगी ना, जितने अन्न खाया हुआ वो विकार सूख जाएगा, और जो चीज़ सूखी होती है वो शुद्ध होती है, इसीलिए तो गंदगी को भी सूर्य सुखा देता तो कीचड़ भी साफ हो जाता, उसमें पैर रखने लायक बन जाता, वो भूमि बन जाती है। तो इंद्रियों में भी जब सूख जाते हैं, अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए एकादशी इतना वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना उसमें कि अब एकादशी आ गई, अब तो भूखा रहना पड़ेगा। या फिर हम लोगों ने उसके विकल्प ढूंढ लिए कि ये बढ़िया बढ़िया फीस्ट होगा, एकादशी मतलब फीस्ट, ये जो है ये हमारे अपना ही नुकसान कर रहे हैं, शरीर का भी नुकसान। एकादशी का जो फीस्ट है वैसे महंगा भी पड़ता है, उस फ्रूट्स कितने महंगे हैं, एकादशी का जितना सामान सब महंगा है, वो जो आता सांबा चावल वो सब जितना भी है, और शारीरिक नुकसान तो है ही। इसलिए पहले के जो राजा थे मानदाता, वो तो अपने पूरे राज्य में एकादशी करवाते थे, सुना कि नहीं, पूरे राज्य में ही एकादशी। एक बार तो उनके दमा निर्जला, उसमें भी 8 से 80 साल के बीच के जितने सब एकादशी करें कंपलसरी। तो दामाद एक बार उनके आए थे एकादशी के दिन, बेचारे भूख के मारे मर ही गए, प्राण त्याग दिए। तो उनकी चूंकि एकादशी का प्रभाव इतना था कि उनकी कन्या ने पतिव्रता भी थी और जितना भी समय था उनके आयु का एकादशी किया, उसके बल से उनको जीवित कर दिया। तो इसीलिए एकादशी कोई विकल्प ढूंढना नहीं है फीस्ट का, ये हमारा फायदा है और इकोनॉमी भी अच्छी होगी देश की, होगी कि नहीं। यदि एक दिन 15 दिन में एक बार अन्न बचेगा देश का, तो महीने में 2 बार, साल में 24 बार बच जाएगा। तो यदि कभी भूख ऐसा ये भूकंप इत्यादि आया या कहीं, कितने लोगों का काम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, तो देश की इकोनॉमी भी अच्छी सुधर जाएगी। तो इसलिए पहले राजा लोग ऐसा करते थे, कभी अकाल आया, कुछ आया, वृष्टि अधिक हो गई, तो काम में आता था वो अन्न राज्य कोष में जो रखा हुआ। और पहली बात तो व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ का मतलब अपने आप में स्थिति होनी चाहिए, अपने शरीर है। हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, और नहीं भी मानने वाले भी है तो हमारा भी रखे हैं ना, तो इसको तो स्वस्थ रखना पड़ेगा, नहीं तो बुढ़ापे में दबा हुआ जीवन चलेगा। तो बेटर है कि एकादशी आदि उपवास करके इन तपस्याओं को करना छोटे छोटे। इसमें ये नहीं है कि दबा दब 5-6 प्रकार का 10 प्रकार का आइटम बना लिए एकादशी में, एकादशी उपवास है, न तो उपवास होगा न तो व्रत होगा, पता है अंतर दोनों में। एक व्रत है जो संकल्प पूर्वक किया जाता है, और एक उपवास है। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना। अधिक दबा के खा लेंगे तो रहेंगे पास में भगवान के, सो जाएंगे, क्योंकि जितना तेलिए खाएंगे उतना तमोगुण आएगा और उसके बाद निद्रा भी आएगी। तो जितना शरीर, ऐसा नहीं है कि एकादशी निर्जला करना ही कंपलसरी है, जिसके शरीर की जो सामर्थ्य है, मिनिमम आवश्यकता तपस्या, इसलिए प्रभुपाद ने ये मेंशन किया स्पेशली कि भक्ति में जितनी आवश्यकता उतना ही करना है। और ये हम अपने शरीर को का ध्यान रख, अब डॉक्टर जब कहेगा तब पूरा वो करेंगे, क्या करेंगे, तब उस समय बड़ा ध्यान देंगे। डॉक्टर ने यदि गए और डॉक्टर ने कहा देखिए आपको सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना, सूप पीना है, बस आप बिल्कुल फॉलो करेंगे, और शास्त्र कह रहे हैं ऐसा करो, तो नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर यदि थापा मार दे तो जरूर करेंगे। तो बेटर है डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसलिए ऐसा तपस्या अनुमोदन किया गया है जिसमें हमारे शरीर का भी लाभ है। इसीलिए वेद कहता है कठोपनिषद में कि बलहीने न अयम आत्मा न लभ्य, अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। ये जो भगवान है इसको बलहीन व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अब जितनी बुढ़ापा बढ़ेगा शरीर की क्षमता कम होगी, कीर्तन में बैठने की क्षमता कम होगी, ठीक से बैठ के जप करने की क्षमता घटेगी, और जितना अन्न दूषित खाएंगे, जितना भर भर के खाएंगे, शरीर तो बेचारा आज तक संतुष्ट हुआ नहीं, ना इंद्रियां संतुष्ट हुई। तो बेटर है कि जितनी आवश्यकता हो उतना लें, ज़्यादा लाभ है, यही तपस्या है। और भक्ति करके भगवान का चिंतन जितने खा करके हो जाए, और भागवत का ये मत है, इसीलिए भागवत में नारद जी खुद युधिष्ठिर महाराज को सारे गृहस्थों को उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों को तो छोड़ो, फीस्ट खाने दो डेली, क्यों। मंदिर में लोग आते हैं डेली फीस्ट का पैसा देके चले जाते हैं, हम सोचते हैं वाह क्या बात है, लेकिन एक्चुअल में हम अपने नुकसान को भूल जाते हैं कि इसमें हमारा हानि है, हमको कितना खाना और क्या खाना है। हम सोचते हैं पनीर फीस्ट में आनी चाहिए, पकवान आने चाहिए, लेकिन लाभ हमको अपना देखना है कि वो खा करके लाभ है या हानि है, समझ में आया। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा था, इसके पहले एक पॉइंट बता रहा था, हाँ, तो भागवत में बोलते हैं भजन के लिए युधिष्ठिर महाराज को नारद जी 7:14-8 में कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देही नाम, जितने में उदर भर जाए ना उतना ही हमारा है, शाम के लिए लेके नहीं बटोरना है कि शाम को क्या होगा, ऐसी भावना ही हमारे महाप्रभु की शिक्षा में बाहर के लोग भी इस बात का गुणगान करते हैं महाप्रभु का ये जो गुण है कि शाम के लिए नहीं ध्यान देना है, मिलने वाला है ना, भूखे भगवान नहीं रखेंगे। भगवान ने जेल में जैसा पुलिस वाले किसी को भूखा नहीं रखते हैं, रखते हैं, भूखे किसी को सजा नहीं देते, डंडा नहीं मारते, खिला खिला के मारते हैं। तो भगवान ने यदि प्रारब्ध है शरीर दिया है तो भोजन की प्राप्ति होगी, अब फीस्ट की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बाकी सामान्य जीवन के लिए, क्योंकि भगवान को कर्म दंडों को भुगवाना है ना, तो उतना खाना देंगे और उतने से हमारा काम बन सकता है, तो इसीलिए ये ध्यान देना। अब हम बताइए, हम भागवत के ही उपदेशों को नहीं मानते हैं, अपने मनमाना करते हैं, तो नास्तिक कौन हुआ? हम की जो ईश्वर को नहीं मानता कौन नास्तिक है? वेद शास्त्र ये नहीं कहते कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, वो एक अलग मत है कि जो नास्तिक में कहते हैं नास्ति ईश्वराइति नास्तिका कर देते हैं, लेकिन वास्तविक में जिसकी लोकांतर में मति नहीं है, जो ये नहीं सोचता है कि दूसरे लोक में जाना है देहांतर के बाद या अगले जन्म में क्या होगा, जो अगले जन्म को पुनर्जन्म आदि को और दूसरे लोकों को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो इसका मतलब हम केयरलेस हुए, हम नहीं सोच रहे कि हमारा अगला जन्म बड़े गर्त में जाएगा, बड़ी दूषित योनि मिलेगी, वो भी एक लोक है, दूसरी योनिया सब क्या है, पार्श्विक योनिया जितने भी हैं सब लोक ही तो है एक प्रकार से, हम भी लोक हैं, लोक से ही शब्द बन गए हिंदी में, लोग बना कि नहीं, तो लोक से ही लोग बन गया। तो एक्चुअल में उस लोक को हम सोचते ही नहीं कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, तो हम भी नास्तिक ही कैटेगरी में हैं, क्योंकि हमको पुनर्जन्म के बाद अगले बार क्या तैयारी है उसके लिए कहाँ सोचते हैं। तो यदि नहीं सोचते तो हम ईश्वर को मानते हुए भी नास्तिक हैं, इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखें। तो ये तो बात हुई इस तपस्या की, ऐसे करना है। यहाँ पर समय कम है, मैं तो भगवान नारायण, यहाँ पर भागवत के अंदर एक विशेष बात है कि भागवत में बार बार नारायण नारायण की ही स्तुति आती है, नारायण के नाम पर स्तुति है। लेकिन आपको पता है जीव गोस्वामी ने इन श्लोकों को और प्रमाणों के साथ में सिद्ध किया है, इवन श्रीधर स्वामी ने भी सिद्ध किया है कि जहाँ पर नारायण कर कृष्ण का नाम है या नारायण का है, एक्चुअल में उन्होंने भी माना श्रीधर स्वामी ने भी कि जो नारायण आदि हैं वो सब श्री कृष्ण के ही अंश हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना भागवत 10:14:14 में, क्या बोलते हैं, नारायणस्त्वम नहि सर्वदेही नाम आत्मा स्याखिल लोक साक्षी नारायण अंगम। कहते हैं कि अब देखिए ब्रह्मा जी स्वयं नारायण के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना में कहते हैं नारायणस्त्वम, एक्चुअल में आप ही नारायण हैं, और नारायणो अंगम, जो नारायण है वो आपका ही अंग है, मतलब आपका अवतार है। क्योंकि मोस्टली जितने भी बाहर लोग हैं वो सोचते हैं कि नारायण से श्री कृष्ण आए, और भागवत का उपदेश भी किसने दिया, नारायण ने कि कृष्ण ने, कृष्ण ने दिया, ये भी एक गलत धारणा है। इसलिए मूल जो ईश्वर है वो श्री कृष्ण ही है। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से मैत्रेय ऋषि को तीसरे स्कंद के 4:13 श्लोक में बोलते हैं कि पुरा मया प्रोक्तम धिष्णे, क्या है वो, पुरा मया प्रोक्तम नाभ्ये अजाय नाभ्ये पद्मे धिष्णे ममादि सर्गे यन मन मम महिमावभासम यत सूर्यो भागवतम वदन्ति। कि ये जो भागवत है, देखो भागवत को भगवान ने खुद नाम दिया भागवत, ये भागवत का उपदेश मैंने किया। कहते हैं ममादि सर्गे, सृष्टि के सर्वप्रथम जो काल था उस समय कहते हैं ये जो ब्रह्मा है ना, मैंने इसको सबसे पहले ज्ञान दिया। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने इसको ज्ञान दिया। तो इसलिए नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी का ज्ञान नहीं दिया, किसने दिया, श्री कृष्ण ने दिया। और भी सिद्ध करने के लिए बहुत सारे श्लोक हैं, इवन भागवत के जो वेद स्तुति है 87वें अध्याय में, उसमें 46वें श्लोक में नारद जी को जब सनकादि ने उपदेश कर दिया तो नारद जी कहते हैं नमस्तस्मै कृष्णा, नमस्तस्मै भगवत कृष्णाय अमल की अमल मूर्तये, ऐसा करके आया श्लोक। तो नारायण का स्तुति किया वेदों ने। तो श्रीधर स्वामी उसमें बोलते हैं कि कहते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जो नारायण को बोला लेकिन नारद जी ने श्री कृष्ण का अंश मान करके, अंग मान करके नारायण की स्तुति किया। और केवल भगवान ने भागवत के चतुश्लोकीय ज्ञान नहीं दिया, पूरी भागवत ही बोल दी। सुना कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं भागवत की चार श्लोक ही नारायण को दिया, लेकिन ये भी सत्य नहीं है। पूरा पूरा चतुश्लोकी भी दिया और पूरा भागवत भी कहा। भागवत में दोनों मत हैं। आपको पता है अंत में भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में सूद गोसाई बोलते हैं कि कस्मै येन विभासितोयम् अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। ये जो भागवत है ना, इसको कस्मै, ब्रह्मा जी का एक नाम है क, क्या नाम है का की चतुर्थी विभक्ति होती है कस्मै। अब बताइए एक नाम है का ब्रह्मा जी का, किसी का नाम रख दें पा तो ब्रह्म भगवान वासुदेव का नाम है आ, तो एक अक्षर कोश भी है संस्कृत में, तो अकार से वासुदेव जी और का से ब्रह्मा का नाम है। तो कहते कस्मै येन विभासितो अयम अतुल, ये अतुल, ये भागवत, ये पूरा का पूरा, ये जो भागवत है ना, ये पूरा का पूरा भगवान ने बोला। दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी ये बात है कि एदम पुरा प्रोक्तम एदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्मणे भग, कहते हैं भगवत प्रोक्तम ब्रह्मणे, इसको भगवान ने ना पूरा भागवत बोला। तो इसलिए पूरा पूरा ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो भागवत केवल चतुश्लोक ही नहीं, तो वो जिसने भी बोला वो कौन है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भागवत के प्रवक्ता, इवन गोपाल तापनी उपनिषद के पूर्व तापनी का 26वां जो मंत्र है उसमें बोला यो ब्रह्मांडम विदधाति, कहते हैं या यो विद्या तस्मै प्राहिणवत, ऐसा करके है। तो उसमें वो बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी को भी सबसे पहले ज्ञान दिया, सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो इसलिए मूल जो श्री कृष्ण है, लेकिन कई बार ये आता है कि नारायण कृष्ण की समानता बताते हैं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी समानता दिखाई पड़ती है वो स्वरूपता है। क्या है? स्वरूपता। केवल सिद्धांत सिद्धांतस्त्व भेदेपि श्री से कृष्णयो हो रसेन उत्कृष्टते कृष्ण ऐसा रस स्थिति। श्री कृष्ण में और नारायण में जो अंतर है वो किस बात का है? रस का अंतर है। अब रसगुल्ला कलकत्ता का भी है और हमारे यूपी का भी है, मिठास किस में, मजा किस में ज्यादा आता है? अब गुड़ की चाय भी है और शक्कर की चाय है, कौन ज्यादा मजेदार होती है? किसी घर में कोई जाए और उसको गुड़ की चाय पिला दे, फटी फटी सी हो, गुस्सा है, कैसा आदमी है, ठीक से व्यवहार करना भी नहीं जानता। तो नारायण श्री कृष्ण एक्चुअल में एक होते हुए भी रस का अंतर है। एक ही गन्ने से देखिए शक्कर चीनी और मिश्री सब बनते हैं गुड़, लेकिन फिर भी जो मिश्री है वो अधिक पौष्टिक, अधिक स्वादिष्ट और निरोग कर देने वाली होती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण नारायण विष्णु आदि सब एक के होते हुए भी श्री कृष्ण में के पांचों रसों का आधान है, वो पांचों रसों में का आस्वादन अपने भक्तों को करा सकते। इवन राम भी नहीं करा सकते, राम की जो भक्ति होगी वो दास्य में ही होगी। श्री कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम जो रसराज हैं, वो चाहे दास भक्ति करिए, शांत करिए, सख्य करिए, वात्सल्य करिए, माधुर्य करिए, सब अकेले पांचों को दे देंगे। और कोई भी भगवत स्वरूप ऐसा नहीं कर सकता ना करता, क्योंकि भगवान ने ऐसा प्रकट ही नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे 2000 के नोट में सारे नोट आ जाते हैं कि नहीं, तो श्री कृष्ण में सब रस है, ऐसा है। तो इसलिए ये अंतर है नारायण और श्री कृष्ण में, एक है स्वरूपता, एक ही है, लेकिन फिर भी भगवान ही परमात्मा रूप से सब जगह अवस्थान करते हैं। और रस की दृष्टि में, और हमको रस ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? रस के लिए तो भक्ति कर रहे हैं, तो रस की प्राप्ति श्री कृष्ण के भजन से होगी। इसलिए यहाँ भी जो भी नमस्कार आता है नारायण के नाम पर, उसमें हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके, उनका रूप ध्यान करके कर सकते हैं। कोई इसमें बुरी बात नहीं है और कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि नारायण श्री कृष्ण के लिए ही इंडिकेट किया जाता है बार बार। बोलिए ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।